अलम तर इल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही, क्या तुमने इस शख्स के बारे में भी देखा, क्या तुमने इस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहिम से झगड़ा किया। ये नमरूद था, अपने दौर का बादशाह। वजह क्या थी झगड़ने की? झगड़ा इस बात पर कि इब्राहिम का रब कौन है, और इस बिना पर कि इस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। यानी जब अल्लाह किसी को दुनिया के चार पैसे या ओहदा दे देता है तो वो शख्स अल्लाह ही के खिलाफ बातें करने लगता है। जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में जिंदगी और मौत है, काला अना उही व उम्मीद, तो इसने इसका जवाब दिया जिंदगी और मौत तो मेरे भी इख्तियार में। ये कैसे थी? कहते जेल में से एक कैदी जिसको उम्र कैद की सजा थी उसको निकाल के कहा जा तुझे आजाद किया, और अपने ही दरबार में बैठे हुए एक बेगुनाह शख्स को पकड़ा और कहा इसको कत्ल कर दो। कहा देखा मैं भी जिसको चाहूं जिंदा करूं जिसको चाहूं मार दूं। सिर्फ वो अपनी बड़ाई दिखाना चाहता था ना। हालांकि इब्राहिम अक्लमंद थे, उलझे नहीं। आज के मुसलमानों को दावा में और गैर मुस्लिमों तक दीन का पैगाम पहुंचाने में ये स्टाइल इख्तियार करना जो इब्राहिम का था। उलझना नहीं, झगड़ना नहीं, बुरा नहीं कहना, मुर्दाबाद नहीं कहना, काफिर नहीं कहना, जानमनी नहीं कहना, बल्कि लॉजिकली एक बात उसने जरा बेढंगी सी जवाब दिया का चलो छोड़ो। फइन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिकि फाति बिहा मिनल मगरिब, मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तू जरा इसको मगरिब से निकाल दे। ये थी वो बात जिसमें फबुहित अल्लज़ी कफर, ये सुनकर वो हक को मानने वाला हैरान रह गया। आज मुसलमानों को इस इंटरलेक्ट की जरूरत है, और आज हमारे बच्चे जो वेस्ट में पलते हैं वो बेस्ट तरीके से ये काम कर सकते हैं। उनको आंखों में आंखें डाल के बात करना आता है, उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। हम तो किसी को इंग्लिश बोलता देखे तो वैसे ही मरूब होके बैठ जाएंगे। हम तो किसी को जरा सूटेड बूटेड देखे तो हम कहते हैं पता नहीं कौन है, खुद जाके देख लो, हम नहीं देख पाते। वजह क्या? हम मरूब है। आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अमल करते हुए अगर हम अपने बच्चों की तरबियत शुरू से लेके 15 साल तक होने में अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत और इस्लाम की सच्चाई बयान कर दें, फिर मुझे और आपको नहीं कहना पड़ेगा। इस तरह से वो दुनिया को इस्लाम देंगे कि लोग उनका शुक्रिया अदा करेंगे। आज जहां लफ्ज तबलीग आता है, ये इस्लाम आता है, तो हम कहते नहीं 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 करना, लोगों को पता लगेगा। देखिए जब मुसलमान सही तरीके से अपना काम करते हैं ना, तो लोग उनका शुक्रिया बोलते हैं। मिसाल देती हूँ, आप देखते हैं कि आपके नेबर में लाइट नहीं है, आप अपने घर से एक लाइट लेते हैं या आप कोई भी एक्सटेंशन कोड लेके उसका स्विच अपने घर में लगा के जाके वो कोड उनको देते हैं, लीजिए आप इसमें अपने बल्ब का बटन लगा लें, क्या वो खुश होगा कि नाराज होगा? खुश होगा। आपको लगता है कि आपके नेबर में लोग भूखे हैं, आप अपने फ्रिज से खाना निकालते हैं या चूल्हे पे कुछ बनाया गरम गरम खाना पेश करते हैं, खुश होंगे कि नाराज? खुश होंगे। आपको लगता है कि आपके नेबर के बैक यार्ड में बहुत सारे पत्ते बिखरे हुए हैं, आप अपना झाड़ू लेते हैं जाके उसको साफ करते हैं, खुश होंगे कि नाराज? देने वाले तो हमेशा जीतते हैं। अब आप देखिए जब आप उनके घर में बत्ती जलाएं तो वो खुश हों, खाना दे तो खुश हों, आप उनके बल्ब जलाएं तो वो खुश हों, सफाई करें तो खुश हों, तो क्या आप उनको इतना प्यारा इस्लाम जो आपको खुद पता होगा खूबसूरत है वो देंगे तो वो नाराज होंगे? हम उनसे कुछ लेने तो नहीं जा रहे। देखिए एक बात अल्लाह ने दिल में डाली, लेने वाला हमेशा नीचे रहता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है, ये तो मानते हैं ना। जब हम अपना कल्चर देंगे तो हमारा हाथ ऊपर होगा। इस वक्त उनको पता है ये हमसे ले रहे हैं, वो अंदर खाते खुश होते हैं हमें देख के, देखो ये तो कपड़े भी हमारे ही लेते हैं, ये तो इनको तो तरीके भी हमारे ही अच्छे लगते हैं, इनको तो शादियां भी हमारी अच्छी लगती हैं। तो जब हम उनसे लेने वाले बने तब उनकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अपने इस्लाम पे फख्र दें, वो फख्र जो अंदर बड़ाई ना पैदा करे बल्कि कॉन्फिडेंस पैदा करे। अवकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिया ख़ावियतुन अला अरूशिहा, या फिर मिसाल के तौर पर उस शख्स को देखो जिसका गुजर एक ऐसी बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों पर ऊंधी गिरी पड़ी थी। इसने कहा यह आबादी जो हलाक हो चुकी है इसे अल्लाह किस तरह दोबारा जिंदगी बख्शेगा। इस पर अल्लाह तआला ने इसकी रूह कब्ज कर ली और वो 100 बरस तक मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह तआला ने इसे दोबारा जिंदगी बख्शी और इससे पूछा बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे हो? इसने कहा एक दिन या चंद घंटे रहा हूँ। फरमाया तुम पर 100 बरस इसी हालत में गुजर चुके, अब जरा अपने खाने और पानी को देखो, इसमें जरा सी भी तब्दीली नहीं आई। दूसरी तरफ जरा अपने गधे की तरफ तो देखो, इसका पिंजर तक बुसीदा हो रहा है, और ये हमने इसलिए किया कि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बनाना चाहते हैं। फिर देखो कि हड्डियों के इस पिंजर को हम किस तरह उठाकर गोश्त पोस्त इस पर चढ़ाते हैं। इसी तरह जब हकीकत इसके सामने बिल्कुल नुमाया हो गई तो इसने कहा कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। ये वाक्य हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ पेश हुआ था, जिनके बारे में सूरह तौबा में आप पढ़ेंगे कि यहूद के गिरोह का अकीदा क्या है कि उज़ैर इब्नुल्लाह, जैसे नसारा ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा तो यहूद का एक सेक्ट जो है वो हजरत उजैर को अल्लाह का बेटा कहता है। वजह क्या है? क्योंकि ये 100 साल मुर्दा रहे थे, फिर अल्लाह ने इनको जिंदा किया। वो बस्ती जिसका जिक्र अभी आपने पढ़ा, ये बैतुल मक़दस की बस्ती थी। और उन्होंने दिल में सोचा कि ये बस्ती कैसे आबाद होगी, बिल्कुल खराब हो चुकी थी। अल्लाह ने उनको यकीन दिलाने के लिए मौत दी, वो फौत हुए। 100 साल के दौरान यहूद का रिवाइवल हुआ और अल्लाह ताला ने इनको दोबारा गलबा दिया। जब वो उठे तो वहाँ बहुत आबादी हो चुकी थी। अब वो तो थी हिस्ट्री। इस वाक़े को ज़रा आज अब मतवसत होने के नाते से देखिए, जिस तरह अल्लाह ताला ने उस दौर में एक मुर्दा बस्ती की ईंटों को और उनकी जगहों को ठीक किया, क्या आज उम्मत मुस्लिमा की हालत को अल्लाह नहीं बदल सकता? आज अब मुसलमान भी तो बिखरे हुए हैं ना। आज कई साहिब दर्द लोग हैं, वो रोते हैं तड़पते हैं कि अल्लाह इस उम्मत को कुछ होगा। अपेरेंटली देखें तो आप कहते हैं हम कभी नहीं चेंज होंगे। इतनी डिसऑर्गनाइज उम्मत हो गई, इतनी गैर मुहज्जब, इतनी सफाई से दूर, जहां खाया छिलका फेंक दिया, जिसको जो दिल चाहा बात किया। नहीं 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 मुसलमान नहीं ठीक हो सकते। आज कुछ लोग ये सोच दे रहे हैं और मीडिया पे अल्लाह ताला हिदायत दे, ऐसे लोगों को बैन करने की जरूरत है जो मुसलमानों और पाकिस्तानियों के खिलाफ आके बातें करते हैं या किसी और मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ। ये मुसलमानों का मोरल डाउन करते हैं। इस वाक्य को बेस बनाते हुए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तूने उस मुर्दा बस्ती को जिंदा किया और वो 100 साल फौत रहे, हम भी तो तकरीबन 300-400 साल से इस वक्त धक्के खा रहे हैं। ये मुसलमान जो इस वक्त 2000 में पहुंचे हुए, इन्होंने बहुत धक्के खा लिए, अल्लाह तो इसको जिंदा कर दे। जरूरत इस बात की है कि हम लोगों के सामने वो यकीन पेश करें, वो हक पेश करें, इस्लाम के वो चलते फिरते अमली नमूने बनकर दिखाएं। तो आप देखिए कि जैसे अल्लाह ने यहाँ मुर्दा हड्डियों को जोड़कर दोबारा जोड़ दिया, क्या अल्लाह के लिए इस उम्मत को जोड़ना मुश्किल है? ये सब होगा, इंशाल्लाह होगा। और कितनी खुशी की बात है कि वो आपके मेरे हाथों से हो, वो हमारे बच्चों के हाथों से हो। आज की माँ अपने बच्चे को ये लोरियां दे, आज आप अपने बच्चों के बालों में हाथ फेरें तो कहो मेरा बेटा, मेरा प्यारा बच्चा, तू है जिसने इस दुनिया में अल्लाह का पैगाम देना। मसला पता है कि जब आप कहेंगे ना अल्लाह का पैगाम देना, तो बच्चा कहेगा अम्मी का इशारा है कि बेटा तूने दाढ़ी रखनी है और बेटा तूने शलवार टखनों से ऊंची करनी है, वहीं घबरा जाते हैं। अच्छा बेटा फीस भी लाला कुछ करो, अच्छा जिसका तो डोनेशन बॉक्स पकड़ के खड़े हो जाऊँ, आते जातों को दू। ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये दुख के साथ कहती हूँ बातें, खुशी की तो नहीं है। मेरा अंदर से दिल पिघलता है जब ये चंद लफ्ज बोलती हूँ, लेकिन जरूरत है बोलने की। कि आज हम जब अपने बच्चों को कहेंगे ना घर जाके बेटा इस्लाम के लिए कुछ करो, तो वो यही सोचेंगे आज इस्लाम के लिए काम करना कोई बात नहीं। वरना आप देखिए, मैंने खुद देखा है बच्चों को स्कूलों में वॉलंटियर करते हैं, सड़कें साफ करते हैं, वो पत्ते उठाते हैं, वो कुकीज बना बना के बेच के वो सेल्स में पैसे स्कूलों को देते हैं। क्या समझते हैं कि आप हमारी यूथ में कोई जज्बा नहीं है? सब है, हमने उनको ऑनर नहीं दी। वो उनके स्कूलों के लिए जाके बाथरूम में धो दें, वॉलंटियर्स कर लें, कैश रजिस्टर्स पे खड़े हो जाएं सारा दिन, वो फख्र करें। जब आप उनको इस्लाम की बात करें कि बोरिंग। रात मैंने एक दर्द बहुत ही शिद्दत से महसूस किया, मस्जिद थी, और ये आप मेरे से अब दर्द सुनते ही रहेंगे। ये जब भी मैं पब्लिक प्लेसेस पे जाती हूँ तो मेरा हाल ये है, और मैं सोचती हूँ कि मैं ना ही जाऊँ तो अच्छा है, मैं मस्जिदों में क्यों जाए, घर में और घर से क्लास और क्लास से घर हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। रात को मस्जिद में गई, इतनी अच्छी माशाल्लाह तरीके से उन्होंने तरावी पढ़ाई। तरावी से पहले उन्होंने पारे का थोड़ा सा थीम बताया इंग्लिश में चंद जुमलों में कि आज का पारा जी होगा। फिर उसके बाद उन्होंने तरावी के बाद लेक्चर शुरू किया। जब 8 तरावी होती है बहुत सारे लोग निकलते हैं और उसके बाद वो शुरू हो गए। यानी जो चीज मैंने बाहर आके देखी, नो वन वॉज लिसनिंग। हमारी सारी यूथ, लड़के बाहर हैं सड़कों पे खेल रहे हैं, औरतें बाहर खड़े होकर बातें करी। जूं ही मौलवी साहब ने लेक्चर शुरू किया, मस्जिद से लोग यूं निकले कि जैसे आप कह लें कि मशक का पानी खाली हो तो निकलने लगे। मैं सोचू कि अगर मेरे साथ अब आप करें ना ऐसे कि मैं पढ़ा रही हूँ और आप उठ के अपने बस्ते समेट के जाएं, तो मैं फौरन कहूंगी टाइम हो गया, खुदा हाफिज, मैं जा रही हूँ, आई कैंट से एनीथिंग। वो बेचारे बोल रहे थे मस्जिद में लोग बातें करें, मेरा दिल टूटा। मैंने कहा अल्लाह अभी ही पारा सुन के उठे हैं, और इसी की बात जब वो बेचारा मौलवी आपको बता रहा है कि कुछ, और इंग्लिश में बता रहे थे। चलो हम सोचते हैं कि उर्दू नहीं आती हमारी यूथ को इसलिए नहीं आते, तो मैंने तो इंग्लिश में भी नहीं लोगों को सुनते देखा। मैंने इतना तड़पी, इतना मेरा दिल टूटा कि अल्लाह ये मुसलमानों बच्चों को, और बच्चे छोड़िए बड़े भी, मर्द भी बाहर खड़े हैं जूतों में बातें कर रहे हैं। इधर मौलवी साहब और उनका ख्याल था ये मौलवी साहब आदत के मुताबिक बोल रहे हैं, सिर्फ वो लोग मस्जिद में उनके सामने बैठे होंगे जिन्होंने 20 तरावी पढ़नी थी। बहुत दुख हुआ मुझे, आज हमारी उम्मत क्यों इतनी सर्द हो गई, कोल्ड, ठंडे, ऐसे लगता है बर्फ की सिल को हाथ लग गया। इस किताब से ना गर्मी ना जुश उनको नहीं फील हुआ कि ये आदम का किस्सा क्या है, ये इबलीस का क्या है। और मैंने जो बातें आपको 2 दिन पहले ही बताई हुई थी वो सारी याद आ रही थी, जब तिरावी हो रही थी तो वो सारी बातें अपने सामने थी, तो मैं अल्लाह का इस पे शुक्र करके रो रही थी कि अल्लाह मुझे समझ आ रहा है। तो लोगों को शौक क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा दीन अपना इतना बोझल हो गया। और वो बहुत अच्छा बता रहे थे, ये भी मत कहें कि वो पाकिस्तान से आए हुए बेचारे मौलवी साहब थे जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं। इस वक्त ये आप और मैं काम करेंगे, जो माँ की गोद की गर्मी होती है ना, वो अल्लाह की मोहब्बत की गर्मी देती है। आपने इस किताब से मोहब्बत देनी है, आपने लोरियां सुनानी है, आपने बकरा और आले इमरान और सूरत निसा और मायदा, आपने इनका शौक पैदा करना है, आपने अपने बच्चों को देना है नबी से मोहब्बत करना सिखाना है। वरना याद रखिए, हमारी नस्लें ठंडी हो गई। मैं नहीं कहती बुरी हैं, लेकिन वही बात है कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी नस्लों की सही तरबियत की तौफीक दे। और इससे पहले किसकी तरबियत करने की जरूरत है, अपनी करेंगे। असल मसला ये है कि जब हमारे बच्चे हमें पूछेंगे कि मम्मी मुझे तो कह रही है व्हाट्स अबाउट यू, फिर वहां सारे क्वेश्चन, फिर हम कहते हैं ना इनको छेड़ो ना बात सुनो, चुप कैसे बैठे रहो, थोड़ा सा सदका और दे दूंगी, थोड़ा एक उम्रा और कराएंगे, हालत नहीं बदलेगी। इतनी मुझे तो ऐसे लगता है वो सारे सालों का दर्द इस साल के दौरे कुरान में जा रहा है, क्योंकि मौजू ये है। हर तबलीग का, हर खुलासे का आखिरी एंड आज के मुसलमान का ये होना चाहिए कि हम कैसे उभरे, इस्लाम का सूरज कैसे उभरे। क्या हम गुलामी में मर जाएंगे? क्या हमने नहीं सोचा कि कभी लोग हमारे मुल्कों का नाम लेके गए, उधर का वीजा कैसे मिलेगा? हाय उधर कैसे जाएंगे? हाय मुझे एक दफा उधर जाना है, मुझे विजिट करना है। पंजों पे, उंगलियों के बल पे मुछल रहे हैं हमारे मुल्कों के लोग बाहर के मुल्कों में आने के लिए, एक झूठे पासपोर्ट बना के या एक कार्ड लेने के लिए या एक पासपोर्ट लेने के लिए सारा घर बेच के आने को तैयार है, बीवियों के जेवर बेच के आते हैं। 10-10, 20-20 साल से कुछ लोग इन मुल्कों में आके बैठे हैं, वापस नहीं जा रहे। माँ मर गई नहीं गए, बाप मर गया नहीं गए, रिश्तेदार मर गए नहीं गए, क्योंकि चले गए तो पेपर वर्क रुक जाएगा, फिर आ नहीं सकेंगे। इतनी इज्जत है आज हमारे दिलों में इनकी, क्या ये इज्जत मुसलमान मुल्कों की नहीं हो सकती? अगर इन मुल्कों की, तो इसकी रीजन समझ आती है। ये रीजन आप और मैं पैदा करें, आप कहेंगे तो बड़ी बात है, तो फिर छोटे से घर से शुरू करें। नुक्ता आगाज मेरे और आपके घर से है, नुक्ता आगाज मेरी जात से है, मेरे बच्चों से है। आप कहते शौहर नहीं मानते तो कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों को तो मनवा लीजिए। तो दुआ कीजिए कि आज हम इस सोच को देखें कि हमारे दिल में ये तड़प हो कि अल्लाह इस मुर्दा बस्ती को जिंदा करे। आज दिल की बस्ती भी वीरान है, आज इस्लाम की बस्ती वीरान है, आज कुरान वीरान लगता है, आज मस्जिदें वीरान लगती हैं। जब मस्जिद रमजान में भरती हैं, इर्द गिर्द के शहरी भी देख के कहते होंगे पता नहीं क्या हो गया, उनको भी पता चल गया कि वी आर मुस्लिम ऑफ रमदान, वी आर रमदानी मुस्लिम। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी आंखें खोल दे, नहीं हालत बदलेगी। हम ये बातें करके जा सकते हैं, अभी तो तीसरा पारा आधा हो चुका होता, लेकिन हालत नहीं बदलेगी। ये वो गुर हैं जिसने पारा पूरा हुआ ना हुआ, लेकिन ये याद रखिए कि गलबा इस्लाम का दिस इज द ओनली वे जो मैंने सीखा अभी तक, नो शॉर्टकट। कोई हमारे पास ऐसा कोई वजीफा नहीं है कि सारी उम्मत बैठ के पढ़े तो मुसलमानों को इज्जत मिल जाए। हमारे पास कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि जिसके रास्ते से हम गुजर के कुछ रिचुअल्स को अदा करें और कल सारी दुनिया में मुसलमान बाइज्जत हो, ये नहीं है। ओनली वे यही साहबा की जिंदगी से सीखेंगे आप, आगे आगे चलते जाएंगे, आपको साहबा की कहानियां मिलेंगी, फिर आप खुद देखेंगे। तो दुआ कीजिए कि आज भूले हुए सबक आज याद आ जाए। ये आज बिखरी हुई उम्मत कि जिसको कितने हम एक भेड़ों के रेवड़ की तरह इधर से उधर चाहता देख रहे हैं, एमलेस वॉन्डर ब्लाइंडली। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने आप को सबसे पहले इसमें पेश करें। अब एक और वाकया है हजरत इब्राहिम का, अल्लाह ताला ने उसको भी हमारे सामने रख दिया। वैस काला इब्राहिम और रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता, और वो वाकया भी पेशे नजर रहे जब इब्राहिम ने कहा था कि मेरे मालिक मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। फरमाया क्या तू ईमान नहीं रखता? क्या मतलब ये सवाल? इसलिए कि इब्राहिम के दिल में ख्याल आ गया था कि अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं है कि मुर्दा जिंदे हो, तो ऐसा नहीं है। याद रखिए कि अल्लाह ताला अंबिया कराम को ईमान और फेथ की भट्टी बनाना चाहते हैं, फर्नेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब उनके अंदर ईमान होगा तो दूसरों को देंगे। बात करने वाले के अंदर दर्द नहीं है, दूसरों को कैसे देगा? बात करने वाले के अंदर ईमान नहीं है, दूसरों को कैसे देगा? तो लिहाजा अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यहाँ ये बात कि क्या तुझे ईमान नहीं है, इसको इसलिए ला रहे हैं कि ईमान था, लेकिन वो देखना चाहते थे कि किस तरह अल्लाह ताला नामुमकिन को मुमकिन में बदलता है। उन्होंने अर्ज किया अल्लाह ताला ईमान तो रखता हूँ मगर दिल का इत्मीनान दरकार है। फरमाया अच्छा तो चार परिंदे ले लो और इनको अपने से मानूस कर लो, फिर इनका एक एक जुज एक एक पहाड़ पर रख दो, फिर इनको पुकारो वो तेरे पास दौड़े चले आएंगे। खूब जान लो कि अल्लाह निहायत बाइक्तदार और हकीम है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला पैगाम कैसे फैला देता है। मुर्दा परिंदे जिंदा हो गए, इब्राहिम ने जब खड़े होकर आवाजें लगाई वो उठ के चल पड़े। इसी तरह से याद रखिए जब मुसलमान हकीकत में सच्चे हो जाएंगे, संजीदा हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला मुर्दा बस्तियों की तरह मुर्दों कौमों को भी जिंदा करेगा। और अल्लाह ताला वो ईमान आपके और मेरे अंदर भर दे कि जिसकी हरारत से हमारे इर्द गिर्द वाले पिघल जाएं। جن گلیوں سے ہم گزرے وہاں ایمان آ جائے، وہاں سے اسلام آ جائے، ورنہ یاد رکھیے آج تاریکیوں میں جینے والے کل تاریک ترین پلیس یعنی جہنم میں داخل ہو جائیں گے. ہمیں تڑپنا چاہیے، جہاں ایک طرف ہمیں اسلام کو پھیلانے کا درد پیدا کرنا ہے نا، اسی طرح کفر کے ساتھ منسلک لوگوں سے ہمدردی کی بھی ضرورت ہے. ہائی ایسے ہی مر جائیں گے، ہاں ان کے نصیب میں جہنم کے اندھیرے ہیں، اس کے لیے پھر آج اور مجھے آپ کو فکر کرنا ہوگا. یہ تین واقعات ہیں، انبیاء کرام بحثوں میں نہیں الجھے. پہلے واقعے میں ہم نے ابراہیم کا علمی جہاد دیکھا، علم کی بنیاد پہ نمرود کے ساتھ معاملہ کیا، آج اس کی ضرورت ہے. مخالف دلائل سے ہارتے ہیں، قائل ہو گیا مگر تائب نہیں ہوا نمرود، وجہ کیا کہ دل میں بڑائی بیٹھی بھی تھی. تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اسی طرح لیتا ہے. پھر دوبارہ یہ دو واقعات آپ سمجھ گئے کہ آیت الکرسی کے بعد یہ واقعات کیوں آئے، تاکہ لوگوں کو اللہ کی قدر آ جائے کہ اللہ کون ہے. اب آگے یہاں سے مال کی باتیں ہیں.